भारत में समाज के अलग अलग तबके अपने धर्म जाति के आधार पर राजनीतिक दलों का समर्थन या विरोध करते तो नजर आ जाते हैं, लेकिन कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या ने तो पत्रकारों को ही राजनीतिक विचारधारा में बांट दिया लगता है। हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब। हर्षवर्धन जी, किस तरह का माहौल इस समय भारत में है? ऐसा नजर आता है कि जो पत्रकार जिनसे ऑब्जेक्टिविटी की उम्मीद होती है, जिनसे निरपेक्ष होने की उम्मीद होती है, वो खुद को अलग अलग खांचों में या हिस्सों में फिट करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया SBS रेडियो का कि इस मुद्दे पर आप लोग बातचीत कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं बहुत बड़ी चिंता की बात है और दुख की बात है कि हमारे कर्नाटक राज्य में एक पत्रकार की हत्या होती है और उसके हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं, उसके पहले ही कुछ लोग वर्डिक्ट सुना देते हैं। और जो हत्या हुई है उस हत्या की वजहें क्या हैं वो अभी तक साफ नहीं है। जो हत्या हुई है उसमें कौन से लोग हो सकते हैं जिनका मोटिव पूरा हो सकता है, उस पर अलग अलग दृष्टिकोण है। और मुझे लगता है कि किसी भी स्थिति में गौरी लंकेश के हत्यारों को पकड़ा जाना चाहिए और वो कर्नाटक की राज्य सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन चूंकि शुरुआत में ही इसको इस तरह से विचार के खांचे में बांट दिया गया कि असल मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही, तो सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि अगर सिद्धारमैया जी जो हमारे कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो किसी भी तरह से इसमें उस निष्कर्ष तक पहुंचे कि आखिर क्यों हत्या हुई गौरी लंकेश की और वजह क्या थी। लेकिन जो मूल सवाल आपने पूछा कि आखिर कैसा माहौल है, क्या पूरी तरह से भारत में पत्रकार विचारधारा की लाइन पर बट गए हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा शर्मनाक है और दुखद इसलिए भी है कि मैं भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो एक रायसीना रोड का पता है जो ठीक संसद के सामने है, जो माना जाता है कि जब देश में कहीं पत्रकारों के हितों को किसी भी तरह से खतरा होगा, चुनौती होगी, तो वो आवाज उठाएगा। पिछले कुछ सालों में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पूरी तरह से वामपंथी विचारधारा के एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट का अड्डा बन गया और वो इस तरह से अड्डा बन गया कि आप जब जब यहाँ तक कि हिंदुस्तान में जब कुछ देश विरोधी गतिविधियां भी हुई, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई हो, वहां के प्रोफेसरों ने की हो, JNU में वहां के छात्रों ने प्रोफेसरों के साथ मिलकर की हो, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में की हो, जगदलपुर विश्वविद्यालय में हुआ हो, जादवपुर विश्वविद्यालय में हुआ हो, इन सब पर क्लब ने उनको मंच देने की कोशिश की और वहीं से दरअसल ये विभाजन बड़ा साफ दिखने लगा। पहले भी ये विभाजन था लेकिन चूंकि जो दक्षिण पंथी विचारधारा के लोग थे या जो कहें कि उनके अलावा जो न्यूट्रल पत्रकार थे वो लिबरल और लेफ्ट लिबरल पत्रकारों की तुलना में या कहें कि सापेक्ष से देखें तो वो बहुत कम थे या बोलते नहीं थे। लेकिन चूंकि एक दक्षिण पंथी विचारधारा की सरकार आई तो उसके बाद मुखर हुए वो पत्रकार भी बातचीत सामने आने लगी। अब इस मसले को अगर देखें तो गौरी लंकेश एक लंकेश पत्र के नाम की पत्रिका निकालती थी बेंगलुरु से, निश्चित तौर पर उनका अपना काम था, बड़ा काम था, नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने पर वो काम कर रही थी। एक कहानी ये कहती है कि उनको तरह तरह की थ्रेट नक्सलियों से मिल रही थी, लेकिन चूंकि वो उनका जो लिखने का तरीका होता था वो हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं, जो सामान्य हिंदू परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं हैं, उसके खिलाफ लिखना, फ्री सेक्स की वकालत करना, इस तरह की बातें वो करती थी, तो स्वाभाविक तौर पर मान लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनसे जुड़े हुए जो भी जो दक्षिण की तरफ विचार के तौर पर माने जाने वाले संगठन है उनका उनकी हत्या में हाथ होना चाहिए, ऐसा वामपंथी पत्रकारों ने, बुद्धिजीवियों ने साबित करने की कोशिश की। नजारा तब देखने को मिला जब प्रेस क्लब में एक शोक सभा होती है जिसमें हम सब जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिसमें मैं कहूंगा कि 20% एजेंडा जर्नलिस्ट है, उसके अलावा सब के सब उसी लिए, बावजूद इसके कि वो वामपंथी एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट थी, सारे पत्रकार वहां पहुंचे और पहुंचना ही चाहिए, किसी भी पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी जाए इससे बुरा किसी देश के लोकतंत्र के लिए कुछ नहीं, उससे भी बुरा है कि अगर आप हत्या पर राजनीति करते हैं। प्रेस क्लब में सीताराम येचुरी से लेकर सारे वामपंथी नेता इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। और उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी, जब उसको मौका मिल गया कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लग रहे हैं तो उसने राजकीय सम्मान के साथ गौरी लंकेश की अंत्येष्टि कर दी, उनको सलामी दे दी, जबकि शहीदों को भी कितने शहीदों को कर्नाटक में राजकीय सम्मान के साथ सलामी देकर विदाई दी गई है अंतिम, ये बड़ा सवाल है। तो ये इस तरह से साफ साफ है कि दरअसल जो लड़ाई लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाम विचार हार चुका है उसको वो इस तरह के हत्या जैसे मामलों में भी, कांग्रेस की जो राजनीति है कि सम्मान हत्या पे भी वो सम्मान की राजनीति करते हैं, वो होता हुआ दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि भारत में इसको कहा जा सकता है कि पत्रकारों के बीच में निष्पक्ष पत्रकार खोजना मुश्किल है, या तो वो दक्षिण खेमे का होगा या तो वो वाम खेमे का होगा।
बड़ा संक्षेप में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या अब भारत के अखबारों को, ऑनलाइन रिपोर्ट्स को, टीवी न्यूज को हम देखते हैं तो कैसे पता चले कि ये निरपेक्ष पत्रकारिता है?
देखिए, मुझे लगता है कि इस बात की जरूरत सबको होनी चाहिए कि आप जब भी कोई खबर पढ़ रहे हैं तो तथ्य जरूर देख लें। जैसे जब कहा जाता है कि गौरी लंकेश की हत्या में वैसा ही हथियार इस्तेमाल हुआ जैसा एमएम कलबुर्गी, गोविंद पंसारे और नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में हुआ था, तो तुरंत आपको चेक करना चाहिए, विकिपीडिया पे, गूगल पे, दूसरे सोर्सेज से जानकारी मिलती है कि जो हत्याएं कांग्रेस के राज में हुई उनका अभी तक कोई भी अंतिम परिणाम नहीं पहुंचा है। और यहाँ तक कि कलबुर्गी की हत्या में जो सीआईडी की जो जांच है, जो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई बाद में, उसमें ये तक कहा जा रहा है कि वो संपत्ति का विवाद है। अब अगर कोई भी अंधविश्वास के खिलाफ लड़ रहा है, परंपराओं में जो गलतियां उनके खिलाफ लड़ रहा है, उसकी हत्या किसी भी वजह से हो जाए और उसको आप सिर्फ और सिर्फ हिंदूवादी या हिंदुत्व के माथे पर, जो लोग काम कर रहे हैं उनके माथे पर चिपकाना चाहें, तो उसको समझना चाहिए। और दूसरी जो चीज है कि जब हम फेक न्यूज या फेक तरह की चीजें करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ से एजेंडा जर्नलिस्ट होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक तरफ ही होंगे, तो उसमें जरूरी है कि तथ्यों को एक बार देखा जाए और तथ्यों के आधार पर उसकी तुरंत भर्त्सना की जाए कड़ाई पूर्वक। क्योंकि खुद गौरी लंकेश, जिनको कहा जाता था कि सच की पैरोकार हैं, उन्होंने 4 सितंबर को अपने ट्वीट में कहा कि कॉमरेड्स आप एक दूसरे को चेतावनी दीजिए लेकिन एक्सपोज मत करिए। जिस महिला के बारे में कहा जा रहा है कि वो सच की बहुत बड़ी समर्थक थी, वो खुद सच छिपाने की बात कर रही है, तो सच सामने लाने के लिए आप तथ्य देखिए, तब उसके बाद किसी पर भी भरोसा कीजिए।
हर्षवर्धन जी, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया।